जमूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। दोस्तों, अलामा इकबाल की कही ये बात बिल्कुल सही है। जमूरियत शतरंज की तरह चेक और मेट का खेल न होकर चेक और बैलेंस का खेल है। इसमें हर संस्था आपस में एक दूसरे को नियंत्रित करती है। ऐसा करने के पीछे की सोच होती है कि शासन का कोई भी हिस्सा बेलगाम न हो पाए। जमूरियत के आधुनिक विचार से पहले पूरे विश्व में राजतंत्र का बोलबाला था, जो तलवार के बल और राजा के दैवी अधिकार के सहारे राज कर रहा था। दैविक अधिकार के भरोसे पर राज कर रहा राजा पूरी तरह से बेलगाम निरंकुश होता था। इतिहास की किताबों में राजाओं की निरंकुशता के हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मौजूदा प्रधानमंत्री और उनका तंत्र भी उसी राजतंत्र पर भरोसा करते हैं। वे मानते हैं कि देश पर राज करने के लिए उनको दैवी अधिकार मिले हुए हैं। वे मानते हैं कि देश की सत्ता पर उनका और उनकी पार्टी का एक अधिकार है, और आने वाले सालों के लिए वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका ये अधिकार हमेशा के लिए बना रहे। इस मंशा को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हालिया संसद सत्र में पेश किए गए एक विधेयक से भी समझा जा सकता है। संसद में पेश किए गए जिस बिल या विधेयक की हम बात कर रहे हैं, वो है चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक और प्रतिष्ठित संस्था को नियंत्रित करने से। इस बिल के प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयुक्त और उसके दो सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री, सदन में विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय मंत्री को मिलाकर बनाई गई समिति के द्वारा किया जाएगा। याद रखें कि ये दोनों ही राजनीतिक दल हैं। इन दोनों का ही सीधे तौर पर चुनाव से संबंध है। ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य चुनाव आयोग की निष्पक्षता को भंग करना है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो चुनाव आयोग पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि किसी भी संस्था के प्रमुख और उसके सदस्यों के चयन में बहुमत के आधार पर ही कोई फैसला लिया जाता है। चुनाव आयुक्त के चयन वाली समिति में प्रधानमंत्री के अलावा एक केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति से सरकार अपने आप में ही बहुमत में आ जाएगी। सरकार की मंशा पर सवाल इसलिए भी है कि पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने विपक्ष की भूमिका को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया है। ऐसे में वो विपक्ष के नेता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को कितना तवज्जो देंगे, इसको लेकर आशंका है, क्योंकि 2-1 के अनुपात से होने वाले फैसले वाली समिति में सरकार के 2 लोग पहले से ही हैं, यानी उनका ही फैसला सर्वमान्य होगा। अभी तक चली आ रही प्रक्रिया के अनुसार चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था। ये तीनों संस्थाएं ज्यादातर मौके पर एक दूसरे के विपरीत ही रहती आई हैं, इसलिए गुंजाइश बनी रहती थी कि चुनाव आयुक्तों के चयन में किसी तरह का पक्षपात नहीं हुआ होगा। संविधान निर्माण के बाद जब चुनाव आयुक्तों के चयन को लेकर जब प्रक्रिया तय की जा रही थी, तब उसकी निष्पक्षता को प्राथमिकता दी गई थी, और इसी सोच के चलते ही प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस को सोच समझकर शामिल किया गया था। ऐसा करने के पीछे की सोच यही थी कि इसमें कोई एक या दूसरे को प्रभावित न कर सके और चुनाव आयुक्तों का चयन केवल राजनीति से प्रभावित न हो। प्रस्तावित बिल में चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि पदानुक्रम में केंद्रीय मंत्री का दर्जा CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कम होता है। उसके अलावा वह सरकार में मंत्री भी है। ऐसे में क्या वह प्रधानमंत्री के मंशा को नकार पाएगा? क्या वह निष्पक्ष रह पाएगा? जबकि इस समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहने से प्रधानमंत्री द्वारा किसी तरह का भेदभाव करने की गुंजाइश कम रहती थी। संवैधानिक के प्रमुखों के चयन प्रक्रिया से CJI को हटाए जाना उनके कद को कम करने का प्रयास है। CJI न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं, इस तरह से संविधान के संरक्षण का भी काम करते हैं। CJI के अलावा यह चुनाव आयोग के कद को कम करने का प्रयास भी है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त का कद, पद और वेतनमान सब कुछ CJI के बराबर होता है। इसके बाकी सदस्यों का कद भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। नए बिल के कानून बन जाने के बाद से पद क्रम में वे केंद्रीय राज्य मंत्री और कैबिनेट सचिव के समकक्ष होंगे और उन्हें इसी स्तर की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। चुनाव आयुक्तों की स्थिति में यह बदलाव संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार को सीधे तौर पर कम करने से जुड़ा हुआ माना जाना चाहिए। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, जिसे अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इस पर जिम्मेदारी है कि वो देश भर में होने वाले किसी भी प्रकार के चुनावों को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए। लोकतंत्र जैसे कार्यप्रणाली में उसका निष्पक्ष रहना जरूरी ही नहीं, लाजमी भी है। चुनाव आयुक्तों के चयन के मसले पर दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद बीते अप्रैल के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पहले से निर्धारित प्रक्रिया को सही माना था और कहा था कि चयन के लिए बनी समिति में सीजीआई को शामिल रहने से चुनाव की स्वतंत्रता बनी रहेगी, क्योंकि वह सरकार के यस मैन यानी हा में हा नहीं मिलाएगा। तो साथियों, क्या आपको भी लगता है कि चुनाव आयुक्तों के चयन वाली समिति में सीजीआई को हटाकर केंद्रीय मंत्री को शामिल करना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर चोट करेगा? क्या सरकार इस तरह कानून बनाकर चुनाव आयोग को अपने पाले में लाना चाहती है, जिससे कि चुनावों को प्रभावित कर वो अपनी सत्ता बनाए रखे? इस मसले पर अपनी बात पक्ष में और विपक्ष में दलील के साथ जरूर रिकॉर्ड करें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये मुद्दा समाज और आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपकी बात भले मसले के पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी बात पक्ष और विपक्ष कार्यक्रम में रिकॉर्ड जरूर करें। अपने फोन से नंबर 3 का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी के ऐप में ऐड का बटन दबाकर, क्योंकि मोबाइल वाणी का हमेशा ये विश्वास है कि बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।